ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की शिक्षाओं में एक मुख्य शिक्षा है पूर्ण विराम लगाना। प्यारे बाबा ने 22/1/88 की मुरली में एक बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि यज्ञ में 350 बच्चे थे, 11 बज गए थे, 1 बजे भोजन की बेल बजनी थी, लेकिन घर में आटा भी नहीं था। ऐसे में कोई बेफिक्र रह सकता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा इस अवस्था में भी अचल अडोल रहे। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं कल्याण की बिंदी लगाना, ना कि क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता अपनाना। एक अन्य मुरली में बाबा ने कहा जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वही फुल पास होता है। एक और मुरली में बाबा ने कहा मौज में रहने वाले फुल स्टॉप लगाते हैं और वो सूर्यवंशी बनते हैं, और मूंझने वाले चंद्रवंशी बनते हैं। और बाबा ने कहा अंतिम जो पेपर होगा उसमें भी यही प्रश्न आएगा कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, और उसी के आधार पे सर्टिफिकेट मिलेगा। बाबा ने ये भी कहा कि जो डॉट लगाना जानता है वो बाप को सहज याद कर सकता है, क्योंकि बाप भी डॉट है। तो आज हम उसी की चर्चा कर रही हैं कि हम कैसे थे और आगे हमको कैसा बनना है। आज बाबा ने कहा एक बाप से ही सुनो, दुनिया की बातें ना सुनो, ना पढ़ो, ना देखो, ना चिंतन करो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो सच्चा योगी होता है वो अंधा, बहरा, गूंगा होता है। अंधा क्यों होता है? क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देखता। बहरा क्यों होता है? क्योंकि वो सुनते हुए भी नहीं सुनता। और गूंगा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वाक शक्ति होती है लेकिन वो फिर भी उसका बहुत कम से कम प्रयोग करता है। तो ऐसा हमको बनना है। बाबा की बहुत सुंदर शिक्षा है फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास ज्ञान का फुल स्टॉक। जिसके पास व्यर्थ बातों का स्टॉक बहुत होगा तो क्या होगा? बहुत वाचा चलेगी, बहुत मनसा चलेगी। और जिसके पास ज्ञान का फुल स्टॉक होगा उसको क्या होगा? जो भी बात सामने आएगी वो ज्ञान युक्त रीति से उसको वहीं स्टॉप कर देगा। किसी को कोई कैसा भी समाचार सुनाओ, हमारे रमेश भाई अपना अनुभव सुनाया करते थे कि जब हापुड़ में हंगामा हुआ तो मैंने साकार बाबा को आके बताया कि बाबा वहां तो ऐसा ऐसा हो रहा। मेरे मन में तो बहुत हलचल थी, तो मैंने सोचा मैं बाबा को सुनाऊंगा तो बाबा भी कुछ तो बोलेंगे। लेकिन मैंने बाबा को सुनाया और बाबा ने कहा बच्चे नथिंग न्यू, ये तो कल्प पहले भी हुआ था और स्थापना में ऐसे तो होते ही रहना है। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं इतना हलचल में और बाबा ने 1 सेकंड में अपने मन को तो अचल बना ही रखा था, मेरे मन को भी अचल बना दिया। तो ये है फुल स्ट्रोक वालों की निशानी, वो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे और परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। फुल स्टॉप लगाने की अगली विधि है ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ कल्याणकारी है। कई बार ऊपर से हमको लगता है इसमें तो बहुत अकल्याण है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अंदर उसमें बड़ा भारी कल्याण समाया होता है। अकल्याण के पर्दे को हटा करके देखते हैं ना तो अंदर कल्याण ही कल्याण नजर आता है। किसी भाई ने हमको मैगजीन के लिए एक बार लिख के भेजा था कि मेरी टीचर बहन ने मुझे एक पत्र दे करके दूसरे सेंटर पे भेजा। उस जमाने में ईमेल नहीं थी, इतनी प्रचलित नहीं थी, मोबाइल भी इतना प्रचलित नहीं था, तो मैं वो पत्र लेकर के दूसरे सेंटर पे जल्दी से जल्दी पहुंचूं, इसके लिए मैं रोड पे खड़ा हो गया कि जो भी व्हीकल आएगा मैं उसी में बैठ जाऊंगा। तो इतनी देर में एक ट्रक आया, मेरे साथ एक और भाई था, हम दोनों भाई थे। हमने उसको हाथ दिया, वो रुक गया, और जैसे ही हम पीछे से चढ़ने लगे उसने ट्रक को तेज दौड़ा लिया, हम गिरते गिरते बचे। उसके बाद वो थोड़ा आगे जाके फिर रुक गया, हमने सोचा कोई कारण से इसने तेज दौड़ाया होगा, हम फिर दौड़े, और जैसे ही पीछे से चढ़ने लगे उसने फिर दौड़ा लिया। हमें गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मजबूरी थी, जल्दी पहुंचना था, और फिर आगे जाके वो फिर रुका और फिर हम तेज दौड़े और फिर उसने भगाया। तो मेरे दोस्त ने कहा भी ये कितना भी रोके हमको बैठना ही नहीं है इसमें। तो वो ट्रक वाला तो चला गया, बाद में बस आई और ये लोग बस में बैठे, और अभी 10-11 किलोमीटर की यात्रा की होगी बस से, तो उन्होंने देखा सड़क पे जाम लगा हुआ है, और फिर थोड़ा उतर के भीड़ में जाके देखा तो वही ट्रक उल्टा पड़ा था, क्योंकि जो ड्राइवर था उसने शराब पी रखी थी और वो यही खेल खेल रहा था। तो तब तो इन्हें गुस्सा आया कि इस ट्रक वाले ने हमें बिठाया क्यों नहीं, और अब इन्हें बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा हुआ इसने हमको बिठाया नहीं। तो थोड़ी देर पहले जो घटना है कल्याणकारी लग रही थी, वही घटना अब कल्याणकारी हो गई। इसलिए बाबा ने एक मुरली में बच्चों से प्रश्न पूछा कि संगम युग में क्या नहीं हो सकता, और बाबा ने खुद ही उत्तर दिया, संगम युग में बच्चों का अकल्याण नहीं हो सकता। छोटी बात को बड़ा नहीं, बड़ी बात को छोटा बनाओ, ये भी एक कला होती है। एक शब्द में कोई बड़ी बात को छोटा कर सकता है। सब कलाओं में ये सबसे बड़ी कला है, ये जीवन जीने की कला है। कितनी भी विस्तार की बात हो लेकिन उसको एक शब्द में परिभाषित कर देना। आपने सुना होगा आजादी के दिनों में एक स्वतंत्रता सेनानी था, उसको जब पेपर देना था तो उसमें एक सवाल आया था कि अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति के ऊपर प्रकाश डालो, ऐसा कुछ था। तो प्रश्न तो बहुत लंबा चौड़ा था, उत्तर बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन उसने एक छोटे से शब्द में उत्तर दिया था, फूट डालो और राज करो। तो ये उनकी सारी पॉलिसी का सार था। तो किसी बहुत बड़ी बात को सार में कह देना, एक शब्द में कह देना, या बहुत उलझी हुई बात को एक छोटे से उत्तर से सुलझा देना, ये एक बहुत बड़ी योग्यता है, और बाबा ने हम बच्चों को ये योग्यता सिखाई है। तो जो बच्चा इस योग्यता को जीवन में अपना लेता है वो बड़ी बात को छोटा करके उसको खत्म कर देता है। बनी बनाई बन रही, नथिंग न्यू की स्मृति रही। हम जो भी कुछ देख रही हैं, ये सब कुछ अनगिनत बार रिपीट हो चुका है। कहती है नया तो कुछ होना नहीं है, उसकी चिंता करी, और जो निश्चित है वो होके रहेगा तो फिर क्यों चिंता करी। तो इस रंगमंच के इस प्रवाहमान नाटक का हम आनंद लें। लोग नाटक देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, बाबा कहते हैं इस बड़े ड्रामा में से छोटी छोटी घटनाएं लेकर के वो नाटक बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं। और आप तो इतने बड़े बेहद के ड्रामा को हर पल देख रहे हो, हर आत्मा अपनी तरह से एक्टिंग कर रही है। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी एक्टर हैं, हम भी एक्टर हैं, और हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो रंगमंच ये प्रॉपर्टी है। जब तक हम रंगमंच पे हैं हम उसके मालिक हैं। जैसे कोई श्री राम का रोल प्ले करता है तो तो जब तक वो रंगमंच पे है तब तक वो सोने चांदी के कपड़े छत्र बर्तन सिंहासन सब कुछ उसका है, और जैसे ही रंगमंच से उतरेगा सब कुछ रंगमंच का, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। तो हमारी दौलत भी रंगमंची है, हमारे रिश्ते भी रंगमंची हैं। जब तक हम रंगमंच पे हैं ये सब चीजें हमारी, और जैसे ही हम रंगमंच से उतरे कुछ भी हमारा नहीं है। दूसरों को ना देखें, सबका अपना अपना पार्ट है, सभी अपना अपना भाग्य बना रही हैं। जो दूसरे को देखता है ना वो खुद को देखना भूल जाता है। कोई दूसरे के घर को ही देखता रहे तो अपना घर कैसे संभालेगा, दूसरे को चलते हुए देखेगा तो खुद ठोकर खा जाएगा, दूसरे की कमी देखेगा तो अपनी कमियों को खत्म करने के लिए समय कहाँ से लाएगा। आपने सुनी होगी वो घटना, एक महिला अपनी छत पे बैठती थी और पड़ोसिन के सूखते हुए कपड़ों को देखती थी। बीच में एक दीवार थी कांच की, तो अपने बच्चों को कहती थी देखो ये तुम्हारी आंटी ना कपड़े अच्छे नहीं धोती, पीले पीले कपड़े धोती है, पता नहीं इसका साबुन अच्छा नहीं है, इसका सर्फ अच्छा नहीं, अपने कपड़े देखो कितने व्हाइट व्हाइट है। तो ऐसे रोज कपड़े देखती थी। एक दिन उसने देखा कि इसके कपड़े भी व्हाइट हो गए हैं, तो बच्चों को कहती है देखो बेटा लगता है इसने सर्फ बदल लिया, साबुन बदल लिया, इसके कपड़े कितने चमक रहे हैं। तो उसी का बेटा कहता है मम्मी आज मैंने अपने जो कांच वाली दीवार है ना इसको साफ कर दिया। तो मैल कहाँ थी, दीवार के कांच पे धूल की परत चढ़ी हुई थी और उसके पार कपड़े पीले दिख रहे थे, जब वो परत उतर गई तो कपड़े साफ दिखने लगे। तो वास्तव में कई बार हमारी आंखें धुंधली होती हैं और हमें कमी दूसरों में नजर आती है, तो फुल स्टॉप लगाने का तरीका है अपने को देखो, दूसरे को देख करके अपना समय मत बिगाड़ो। सब अपना भाग्य बना रही हैं, सब अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। रूप को ना देख, रूह को देखने का अभ्यास करना है। कहते हैं शरीर मरण धर्मा है, और ये जन्मते ही अपने धर्म को निभाना चालू कर देता है। जैसे ही जन्म लेता है इसकी आयु, लोग तो कहते हैं बढ़ रही है लेकिन घटनी चालू हो जाती है। और जो रूह है वो सदा एक रस है, लेकिन इस परिवर्तनशील शरीर का परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कहते हैं एक कण जितना परिवर्तन हो तो क्या दिखे, मन जितना परिवर्तन हो तो दिखे। प्रतिदिन कण कण परिवर्तित होते होते ये शरीर पूरा बदल जाता है। तो इस बनने और मिटने वाले शरीर को क्या देखना, देखना उसको जो अनादि अविनाशी शाश्वत है, और वो है रूह आत्मा। बाबा ये पाठ हमें रोज पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी में एक बहुत प्यारा सा मुहावरा है जिसको हम कहते हैं घर कर गई, ये बात मेरे अंदर घर कर गई। कई बार कोई दृश्य भी घर कर जाता है, किसी की डेथ देखी, डेड बॉडी को देखा तो हम कहते हैं अरे वो सीन तो ऐसा घर कर गया, मन से निकलता ही नहीं। तो वास्तव में मैं आत्मा हूं ये बात भी जब घर कर जाएगी तब आत्मा ही दिखेगी और देह दिखनी बंद हो जाएगी। ये भी घर कर जानी चाहिए। जब कोई बात घर कर जाती है ना तो जागृत में सुषुप्त अवस्था में स्वप्न में चलते फिरते वो मन के अंदर जैसे चलती ही रहती है, टपकती ही रहती है। तो बाबा की ये शिक्षा भी हम तब पालन कर पाएंगे जब ये घर कर जाएगी कि मैं हूँ ही आत्मा। 84 शरीर लिए और ये अंतिम शरीर अभी छूटने वाला है, लेकिन मैं आत्मा तो वही थी, वही हूँ और वही रहूंगी। जब अंदर ही अंदर ये बात चलती रहेगी तो हम इसका स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है। तो केवल ज्ञान नहीं, लेकिन अनुभव। एक होता है मैं आत्मा हूँ ये जानना, और एक होता है आत्मा हो जाना। तो वास्तव में ये बात है आत्मा हो जाने की। अपने विचारों की गति को धीमा बनाएं और दूसरा महान बनाएं। जो विचार महान होते हैं वो बहुत धीमी गति से चलते हैं, और जो विचार नेगेटिव होते हैं वो बहुत तेज गति से चलते हैं। तो अगर हम अपने विचारों को ऊंचा बना लें, महान बना लें, दिव्य बना लें, पवित्र बना लें, तो उन विचारों की गति ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करें। जब हम सामने वाले की आत्मा को देखते हैं तो कितने विचार चलेंगे, और आत्मा से फिसल के दृष्टि जब शरीर पे आएगी तो कितने विचार चलेंगे। आत्मा पे दृष्टि जाएगी तो सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, ये आत्मा है, भाई है, ये परम धाम निवासी है। लेकिन जैसे ही देह को देखेंगे, पहनावे को देखेंगे, तो कितनी बातें याद आएंगी। कहीं कल्चर याद आएगी, कहीं उसका देश, कहीं उसकी भाषा, कहीं उसका मेल फीमेल, बूढ़ा जवान, छोटा बड़ा, कितनी बातें याद आएंगी। तो जो विचारों को समेट के रखना चाहता है, फुल स्टॉप लगाना चाहता है, वो ये अभ्यास डाल ले कि सीधा आत्मा को ही देखना है। सतयुग में हमारी आत्मिक दृष्टि थी, त्रेता में दृष्टि थोड़ी सी नीचे आई और आंख तक दृष्टि आ गई, इसलिए त्रेता का जो आपसी मिलन था वो दृष्टि का था, सतयुग का आत्मिक था। उसके बाद दृष्टि और नीचे फिसली, आंख से नीचे आके कान नाक नए नक्श तक आ गई, और कलयुग में ये फिसलती फिसलती पूरी तरह से दैहिक दृष्टि हो गई। तो अब बाबा कहते हैं पुनः रिटर्न जर्नी करनी है, अब दृष्टि को पुनः ऊंचा ले जाना है, और इसे इतना ऊंचाई पे ले जाना है कि फिर से हमारी दृष्टि आत्मा पर ही जाए। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना बनी रहे। कोई हमसे अगर पूछे कि आप सामने वालों से क्या चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि हम चाहते हैं सभी हमारे लिए शुभ सोचें, सभी हमें दुआएं दें, सभी हमारे प्रति अच्छे विचार रखें। तो हमारी ये शुभ भावना पूरी कैसे होगी? कहते हैं जो बोते हैं वही उगता है, जो देते हैं वही वापस लौटता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सब हमारे बारे में शुभकामनाएं रखें, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबके लिए शुभकामनाएं रखनी पड़ेंगी। और जो शुभ भावनाएं शुभकामनाएं होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे कोई बीज पावरफुल होता है तो उसका कई गुना फल निकलता है। तो शुभ भावना का एक एक विचार हीरे मोती के समान शक्तिशाली होता है, और वो एक शुभ भावना का विचार अपने साथ कईयों की शुभ भावनाएं लेकर के लौटता है। तो फुल स्टॉप लगाने की एक सुंदर विधि है कि जो आत्मा सामने आए उसके लिए हम यही शुभ संकल्प करें कि इसे बाबा की शक्ति मिले, इसका बाबा से कनेक्शन और गहरा जुट जाए, इस आत्मा के अंदर आध्यात्मिक बल भर जाए, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए, अर्थात बाबा के दिए हुए किसी ना किसी वरदान को हम सूक्ष्म रूप में उस आत्मा को दें। कई बार हमारे मन में सवाल आता है, इसको क्या पता हमने इसके बारे में क्या सोचा। इसका बहुत सुंदर उत्तर है, थॉट्स ऑल्सो ट्रेवल, विचार भी ट्रेवलिंग करते हैं, और जिसके बारे हम जो कुछ सोचते हैं उस तक अपने आप पहुंच जाते हैं, बिना कहे बिना बताए। आपने वो बात सुनी होगी कि एक बार दो मित्र थे, तो एक गरीब था और एक अमीर था। एक ही साथ स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो अमीर था उसने अपने बाप का बिजनेस संभाल लिया। उस अमीर मित्र ने गरीब को कहा कि तुम मेरे यहाँ ही नौकरी कर लो, तो उसको अपना मुनीम बना लिया और सारा कारोबार उस पे छोड़ दिया। तो एक दिन उस मुनीम के मन में आया कि मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मैंने कभी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया, तो अगर ये एक अनाज का ट्रक इस बार अपने घर भिजवा दूं तो मेरे दोस्त को थोड़े पता पड़ेगा, वो कभी कुछ देखने थोड़े आता है, उसको तो मेरे पे पूरा विश्वास है। अब वो अनाज का ट्रक भरवा के और पूरी तैयारी कर लेता है कि इसे मैं अपने घर भिजवा दूं। इतनी देर में उसका जो मित्र है मालिक, उसके मन में आता है कि 20 साल हो गए मैंने कभी दुकान पे जाके नहीं देखा, मेरा मित्र क्या करता है, आज मुझे जाके देखना चाहिए। और वो घर से पूरी तैयारी करके और निकलने में है कि मैं दुकान पे जाके देखूं। अब इतनी देर में उस मुनि मित्र के मन में आता है, अरे 20 साल तक मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैं आज बेईमानी करके 20 साल की ईमानदारी को क्यों बट्टा लगवा रहा हूं। तो उसने वो ट्रक जो घर के लिए तैयार किया था वो वापस मुड़वा लिया। अब इसके मन में भी आया कि 20 साल तक मैंने अपने मित्र की कभी इंक्वायरी नहीं की, आज मैं इंक्वायरी करके क्यों विश्वासघात कर रहा हूं। और उसने भी अपना दुकान पे जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। तो इसको कहते हैं विचार भी ट्रेवल करते हैं। तो अगर हम किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं, कल्याण की कामना रखते हैं, आगे बढ़ाने की कामना रखते हैं, तो उस तक हमारी वो भावना पहुंचती ही पहुंचती है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता को बढ़ाते जाएं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है पवित्रता। बाबा कहते हैं इसके बल से सतयुगी दुनिया स्थापित होती है, इसके बल से पवित्र प्रकृति का परिवर्तन होता है। लेकिन ये मनसा तक भी होनी चाहिए, वाचा में भी चाहिए। कई बार मनसा में जो व्यर्थ विचार आते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे वो भी पवित्रता में कमी के कारण आते हैं। और व्यर्थ विचार क्यों आते हैं? क्योंकि समर्थ विचार हमारे पास नहीं, मन के पास समर्थ का स्टॉक नहीं, तो इसलिए हम इतना समर्थ का स्टॉक बढ़ाएं कि जो ज्ञान युक्त विचार नहीं है वो अंदर उत्पन्न ही ना हो। अनुमान की बीमारी, पर चिंतन पर दर्शन पर मत से मुक्त रहकर अंतर्मुखता को बढ़ाएं। एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे तीन पर काट दो, वो तीन पर हैं पर चिंतन पर दर्शन और पर मत। और बाबा ने कहा था एक पर लगाओ, वो पर है परोपकार। आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा, परोपकार की भावना या दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने की भावना मनुष्य को महान बना देती है। जब वो छोटा बच्चा था तो एक बार अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में एक लड़की थी गरीब जो अमरूद का टोकरा सिर पे रख के आ रही थी। तो ये दोनों भाई बहन कुछ ऐसे लापरवाही में चल रहे थे कि उस लड़की के साथ टक्कर हो गई, उसका टोकरा गिर गया और बहुत सारे अमरूद जमीन में गिर के मिट्टी में भी भर गए, फूट भी गए, तो वो लड़की रोने लगी। तो इसकी बहन कहती है कि चलो भाग चलते हैं, नहीं तो कोई आएगा, देखेगा, हमको डांटेगा पीटेगा। लेकिन लड़का कहता है नहीं, भागना नहीं। उन्होंने जो बचे हुए अमरूद थे वो टोकरे में डाले, वो तो थोड़े से ही थे, और फिर उसको कहा कि तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, और ऐसे कह के अपनी जेब में हाथ डाले तो कोई थोड़े बहुत पैसे मिले, 50 पैसे रुपया उस जमाने के हिसाब से, उस देश के हिसाब से, वो उसको दे दिए। लेकिन पूरी भरपाई नहीं हुई, तो उस लड़की को कहा हमारे साथ हमारे घर चलो। घर लेके आ गया और माँ को सारी बात सच सच बताई, तो माँ ने एक थप्पड़ तो उस लड़के को लगाया, अपने बेटे को यानी कि नेपोलियन को, दूसरा थप्पड़ अपनी बेटी को लगाया कि तुम लोग ध्यान से क्यों नहीं चले, और फिर कहा कि इस लड़की को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, इसको वापस भेजो। तो ये बच्चा कहता है मम्मी तुम मुझे जो हर दिन जेब खर्च देती हो ना, मेरा वो जेब खर्च 2-3 महीना बंद कर दो, और वो सारे पैसे जोड़ करके इस बच्ची को दे दो। तो माँ ने सचमुच 1.5-2 महीने का जेब खर्च उस लड़की को दे दिया। वो तो हंसती हुई अपने घर चली गई, और इस बच्चे ने अर्थात बालक नेपोलियन ने 1.5-2 महीने स्कूल में ये जो भी कुछ खाता होगा वो नहीं खाया, इसलिए कि मैंने जो गलत कर्म किया उसकी भरपाई हो जाए और उस गरीब बच्ची के साथ अन्याय ना हो। तो जिसके अंदर ऐसी परोपकार की भावना होती है वो व्यक्ति आगे जाकर के महान बनता है। बाबा ने भी हम बच्चों को यही सिखाया कि 3 पर काटो और 1 पर लगाओ। ज्ञान गुण शक्तियों का फुल स्टॉक रहे तो सहज ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं। पिछले दिनों बाबा की एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था कि आप बच्चों के पास रतन जड़ित श्रृंगार नहीं है, लेकिन आप बच्चों के पास एक एक गुण ऐसा है जो हीरे मोती से भी ज्यादा अमूल्य है। भले 9 लखा हार नहीं है, लेकिन आप बच्चे खुद ही बाप के गले के हार बन गए हो। ऐसे करके बाबा ने उस मुरली में ज्ञान गुण और शक्तियों का बहुत सुंदर महत्व बताया था। तो ये बड़ी गहराई से सोचने की बात है कि बाबा का दिया हुआ एक एक ज्ञान रतन हीरे से भी अमूल्य है। एक एक गुण मालामाल करने वाला है। कहते हैं भारत के जो हीरे मोतियों के मटके थे वो अवगुणों के कारण खाली हो गए, और अब जब हम गुण धारण करेंगे तो फिर से हीरे मोतियों के मटके भर जाएंगे और समुद्र हीरे मोतियों की थालियां भर भर के हम पे लुटाएगा। तुम गहराई से सोचें कि क्या सचमुच एक एक गुण में इतनी ताकत है? क्या एक गुण अपने पीछे इतना समृद्धि और इतना सब कुछ लेके आ सकता है? एक गुण हमको कितना अमीर बना सकता है? केवल एक गुण, और उसके पीछे कितने ही गुण खींचे चले आते हैं। इस पर भी एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक बार भगवान अपने भगत के साथ कहीं जा रहे थे और एक पंडित जी भीख मांग रहे थे, तो भगत ने दया करके उसको 100 मोहरे दे दी। सोचा इसकी गरीबी दूर हो जाएगी, और वो मोहरे लेके ऐसे दौड़ा। रास्ते में एक गरीब भूखा आदमी चिल्ला रहा था मुझे कुछ खाने को दे दो, उसने नहीं सुना और दौड़ता ही जा रहा था। तो सामने से एक चोर आया और उसने देखा कि इसके हाथ में पोटली है, तो वो इतना तरीके से छीन के भागा, वो बेचारा चिल्ला भी नहीं पाया, वो किधर छिप गया पता ही नहीं पड़ा। और अगले दिन वो फिर भीख मांगने लगा। तो अगले दिन फिर भगवान और भगत जा रहे थे, तो भगत ने पूछा भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उसने सारी कहानी सुनाई। तो अगले दिन उसको एक हीरा दिया। हीरा तो सोने से भी अमूल्य होता है, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। और वो हीरा लेके खुशी खुशी जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति प्यासा था, उसने कहा पंडित जी मुझे पानी पिला दो, लेकिन उसने नहीं सुना। हीरे के नशे में जा रहा था जल्दी जल्दी, घर जाके एक मटके में हीरा रखा, सो गया। उसकी पत्नी को पानी लेने जाना था, उसने मटका उठाया, नदी पे गई, मटका धोया, उल्टा किया और मटका भर के वापस आ गई। पंडित जी जागे, पूछा इसमें तो हीरा था। तो पिंडिताइन कहती है मुझे क्या पता, मैं तो पानी लेने गई थी और वहां धोया तो वहीं कहीं गिर गया। अगले दिन ये फिर भीख मांगने लगा, तो उसने पूछा भाई भीख क्यों मांग रहा है। उसने फिर सारी कहानी सुनाई। तो इस बार कहते हैं भगवान ने उसको एक सिक्का दिया। तो भगत सोचता है कि मेरे इतने धन से इसकी गरीबी दूर नहीं हुई, एक सिक्के से कैसे गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वास्तव में वो सिक्का क्या था, वो एक गुण था, दया के गुण का प्रतीक था। बिना गुणों के हमें कितना भी धन मिल जाए किस्मत नहीं संवरेगी, लेकिन एक छोटा सा गुण भी हमें मिल जाए तो हमारा खोया हुआ भी सारा धन वापस आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं संगम पर मैं आप बच्चों को गुण रूपी दौलत देता हूँ, शक्तियों की दौलत देता हूँ, जिससे आप सतयुग का खोया हुआ खजाना फिर से पा लेते हो। तो वास्तव में ये कहानी पूरे सृष्टि चक्र की कहानी है। जब गरीब होता है व्यक्ति तो कई लोग उसे धन से मदद करते हैं पर उसकी गरीबी दूर नहीं होती। हमको भी 63 जन्मों में कईयों ने बहुत कुछ दिया होगा लेकिन फिर भी अवस्था नीचे ही गिरती आई। लेकिन जब भगवान संगम पर आकर के एक सिक्का देते हैं, अर्थात ज्ञान का एक पॉइंट देते हैं, अर्थात एक गुण आत्मा में धारण करवाते हैं, तो उससे कैसे चमत्कार होता है। तो वो उस एक सिक्के को लेके चलता है और देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है और एक मछली को उसने पानी से निकाला और वो तड़फ रही है, तो उसके हृदय में दया जागी क्योंकि भगवान ने उसको दया का ही गुण दिया था। तो उसने कहा ये सिक्का ले लो और ये मछली मुझे दे दो। मछली ले ली, उसे कमंडल में डाला, पानी भी डाला, मछली जी गई और जीने के बाद उसने अपने मुख में से वही हीरा निकाल दिया क्योंकि नदी में जो हीरा गिरा था वो उसके मुंह में चला गया था। और कमंडल लेके भगवान के ध्यान में उस गुण का चिंतन करते करते मैं दयावान आत्मा हूँ, मुझे सब पे दया करनी है, ऐसे चलता जा रहा था। तो एक सिपाही भी उसके साथ साथ हो लिया और सामने से चोर, वही चोर गुजरा तो उसको लगा ये सिपाही को लेके ना मुझे पकड़ने आ रहा है। तो वो पोटली को वहीं रख करके दौड़ गया और इसने सिपाही को बता दिया कि ये पोटली कल इसने छीनी थी, ये मेरी है, और पोटली को लेके घर आ गया। अब हीरा भी मिल गया और खोया हुआ सोना भी मिल गया, पर मिले कब, जब दया के गुण को जीवन में धारण किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान गुण शक्तियों का फुल स्टॉक रखो, तो बुद्धि उनमें ही लगी रहेगी, व्यर्थ में जाएगी नहीं, फुल स्टॉप अपने आप लग जाएगा। बाबा मेरे साथ है, अपने सारे बोझ बाबा को दे दें, बाबा को यूज करें। बाबा की जीवन कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें बाबा के अनेक गुणों में बाबा का एक गुण ये भी है कि जब जब कभी भी यज्ञ पे कोई आंच आई तो बाबा ने ना शारीरिक बल को याद किया, ना धन के बल को याद किया, ना जान पहचान के बल को याद किया, सबसे पहले बाबा ने योग बल को याद किया और सब बातों का समाधान योग बल से किया। तो वास्तव में बाबा मेरे साथ है, ये सबसे बड़ा बल है। और जब ये बल हमारे साथ है तो सारे बोझ बाबा के, क्योंकि जो बच्चा बाप के साथ चलता है उसके ऊपर तो कोई बोझ होता ही ना, बाप बिना कहे बोझ ले लेता है। हर बात में हम बाबा को यूज करें। थोड़े दिन पहले हमने मैगजीन में एक छोटी सी घटना डाली थी, एक महिला अपने खरीदे हुए मकान की पेमेंट करने जा रही थी, बैग में बहुत सारा रुपया था और ऑटो में बैठी थी अकेली, मोबाइल जब निकाला पर्स का वो खोला तो ऑटो वाले ने पीछे मुड़ के देखा, उसे पैसे दिख गए और वो ऑटो घुमाता रहा शहर की गलियों में, जगह इतनी दूर नहीं थी, लेकिन जानबूझ के घुमाता रहा। तो इस महिला को शक हो गया, कहा बाबा अब मेरी रक्षा करो, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं अकेली भी हूँ। और इतनी देर में एक जगह जाम लगा था, वहाँ ऑटो रुका और उसने कहा बहन जी यहीं उतर जाओ। तो बहन पैसे देने लगी तो कहता नहीं दो के पैसे दो, आपकी बाजू में एक बूढ़ा भी तो बैठा था। तो वो बहन कहती है नहीं कौन बैठा था, तो पर्स में बाबा का एक फोटो भी पड़ा था, वो निकाल के दिखाया, बोला हाँ यही बैठा हुआ था मैंने देखा। तो कहते हैं भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, वो कब कहाँ किस बच्चे की सच्ची आवाज पे क्या रूप धारण कर ले, क्या रूप प्रकट कर दे, ये बाबा की कमाल है। तो हम बाबा को यूज करें आत्मविश्वास के साथ, सत्यता की शक्ति को साथ रखें। सत्य की हमेशा विजय होती है। कहते हैं सच की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और झूठ की नाव ना हिलेगी और ना डूलेगी, सीधी डूबेगी। सबसे बड़ा सत्य क्या है? हम सत्यता की महिमा तो करते हैं, भारत का जो एम्बलम है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। लेकिन सत्य का अर्थ क्या है? बाबा ने दो शब्द हमेशा यूज किए हैं, सच्चाई सफाई। बाबा को सच्चाई सफाई बहुत पसंद है। सच्चाई की परिभाषा है अंदर बाहर एक। 69 के एक मुरली में बाबा ने कहा वो व्यक्ति सबसे अधिक खौफनाक होता है जो अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है। तो सच्चाई की परिभाषा जो हमारे भीतर है वही हम बाहर प्रकट करते हैं, और सफाई की परिभाषा अंदर कोई विकर्म का किचड़ा ना हो। हम जो विकर्म कर लेते हैं वही सबसे बड़ी गंदगी है, तो कोई विकर्म हमसे ना हो ये सफाई है, और अंदर बाहर हम एक समान रहें ये सच्चाई है। करावन हार बाप है, सेवा बाबा को समर्पित करें। एक मुरली में बाबा ने कहा था यज्ञ में सबसे बड़ा विघ्न है मैंपन का, मैं करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही आता है, मैंने किया तभी सफलता मिली, बाबा ने मुझे ही टच करवाया, इस सेवा के निमित्त मैं ही हूँ, अगर मैं ना हूँ तो ये सेवा हो ही नहीं सकती है। कई प्रकार का रूप बदल बदल करके मैंपन आत्मा को फंसाने के लिए आता है। इसका समाधान बाबा ने एक मुरली में बताया कि बच्चे सेवा सब बाबा की है, आपका अपना व्यक्तिगत धंधा कोई है ही नहीं, दूसरे ने किया तो भी बाबा का काम हुआ, आपने किया तो भी बाबा का काम हुआ। लक्ष्य ये है कि बाबा का कार्य होना चाहिए, उद्देश्य है बाबा को आगे रखना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। वो मेरे द्वारा प्रत्यक्ष हुआ तो भी ठीक, और आत्मा भाई के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ तो भी ठीक। तो हर बात में हम यही मान करके चलें कि मैं निमित्त हूँ। हमारी बड़ी दादी का ये बहुत प्यारा स्लोगन था, निमित्त भाव और निर्मल वाणी। इस निमित्त भाव में वो इतनी दृढ़ थी, सब कुछ करते हुए भी ऐसे लगती थी जैसे दादी कुछ कर नहीं रही है, उड़ रही है, हल्की एकदम लाइट। तो ये निमित्त भाव ऐसा महामंत्र है जिसमें हम हल्के भी रहते हैं और हमारी सेवाएं बहुत द्रुत गति से बढ़ती हैं, हम सबको संतुष्ट भी कर पाते हैं, सबको साथ लेकर के भी चल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीवन जीने की कला है। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो जिन राजाओं में ट्रस्टीशिप थी, निमित्त भाव थी, वो अपनी राजाई को बहुत अच्छा चला सके, चाहे वो शिवाजी रहे, चाहे वो राजस्थान के एक लिंग को मानने वाले मेवाड़ के राजा रहे, कोई भी रहा, तो निमित्त भाव चाहे जहां भी हो, सब करने कराने वाला परमात्मा है, ये भाव जिसमें भी रहा उसने जीवन में बहुत सफलताएं पाई। हमको भी इस महामंत्र से सेवा की, फुल स्टॉप लगाया, आगे बढ़े, कार्य हुआ, पूरा किया, आगे बढ़े। दादी जानकी को आप देखिए कितनी सेवाएं करके आती हैं। यहाँ दादी से कोई पूछे कि दादी समाचार सुनाओ तो दादी कहती है असल मुझे कुछ भी याद नहीं, बाबा की बातें दादी को सब याद रहती है, मुरली में बाबा ने क्या बोला, लेकिन दादी ने क्या किया वो कुछ याद नहीं रहता, उसको दादी तुरंत फुल स्टॉप लगा देती है। तो ये भी हम सब के लिए एक बहुत सुंदर सीखने वाली शिक्षा है। एकांत में बैठ अपने आप से और बाबा से बातें करके आत्मा में बल भरना है, अपने आप से बातें करना, ये एक बहुत सुंदर विधि है आत्मा को चमकाने की, आत्मा का श्रृंगार करने की। दादी जानकी बताती हैं कि एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि हमने सुना है आप भगवान से बातें करती हो, दादी ने कहा हाँ, तो कहा हमको भी सिखा दो, तब दादी ने कहा था मनुष्यों से बातें करना बंद कर दो तो भगवान से बातें करनी आ जाएंगी। तो या तो अपने से बातें करो या भगवान से बातें करो, जब अकेले हो तो अपने से बातें करो, और अगर बात किसी से करनी भी पड़े तो भगवान की ही बातें करो। याद रहे बात बड़ी या बाप बड़ा, जहां बात है वहां बाप नहीं और जहां बाप है वहां बात नहीं, सबसे बड़ा है बाबा और बाबा के सामने हर बात छोटी है। जहां भगवान है वहां बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जब कोई समस्या आए तो उस समस्या को कहो कि हे समस्या, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मेरे साथ एक बहुत बड़ा बाप है। तीन बिंदियों को याद करें, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। श्रेष्ठ स्मृति रहे कि अब घर चलना है, फिर राज्य में आना है, तो पास्ट भूल जाएगा। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह तो पास्ट के जीवन को लेकर के होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और भविष्य को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं अब केवल एक ही स्मृति रखो, ड्रामा पूरा हुआ और अब हमको घर जाना है, नए सिरे से ड्रामा शुरू होगा, उसमें हमें नए सिरे से रोल प्ले करना है। अब तो क्लोजिंग हो रही है और क्लोजिंग के समय पीछे की बातों को क्या याद करें, जब क्लोजिंग ही हो रही है तो जो हो गया सो हो गया, अब तो वापस वो रील खुलनी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बात को भी अकल है, वो रील में लिपट करके जाना चाहती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रील को खोल खोल करके उस बात को फिर देखते, अरे जो रील में लिपट गई, जो चली गई, उसको बार बार क्यों याद करते हैं। इसलिए एक महामंत्र पक्का कीजिए, अब घर जाना है। बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, काम किए जा, नाम लिए जा, ना काहू का डर है, और इस दुनिया में सभी मुसाफिर, ना काहू का घर है। तो हम सब मुसाफिर और हमारी मुसाफिरी पूरी हो रही है, घर चलना है। वर्तमान में जिए, परमात्म प्राप्तियों को याद करें, समय को एक बहती धारा के साथ अगर हम तुलना करें तो नदी का जो पानी चला गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और जो पानी आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे सामने इस समय जो जल की धारा है वही है। तो समय भी एक बहती धारा की तरह से है, जो समय बीत गया वो तो हमारी मुट्ठी से फिसल ही गया, और आने वाला है वो कब आता है, कैसा आता है, वो भी निश्चित नहीं, लेकिन जो वर्तमान मेरे सामने है मुझे उसका सदुपयोग करना है। तो हर बात में अगर हम वर्तमान को अच्छा बना लेंगे तो वर्तमान काल ही तो भूतकाल बनता है, वो अपने आप अच्छा बन जाएगा। और वर्तमान काल अच्छा कब बनेगा, जब हम परमात्मा प्राप्तियों को याद करेंगे, परमात्मा पिता से मुझे क्या क्या मिला, प्राप्तियों की लिस्ट निकालिए, जो पूरे 5000 साल में कभी नहीं मिला वो सब मुझे बाबा से मिला। इतनी लंबी लिस्ट है, कहती हैं सारी धरती को कागज बनाओ, जंगलों को कलम बनाओ, समुद्रों को स्याही बनाओ, तो भी प्रभु की महिमा या प्रभु से जो प्राप्तियां हुई उनको लिखा जाना असंभव है। मैं महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मन का मालिक हूँ, इस नशे में रहो। नशा और निशाना, जब नशे में होते हैं तो निशाना सही लगता है। थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली आई थी, बाबा ने कहा जो चंद्रवंशी है वो निशाना लगाएगा कहीं और लगेगा कहीं, इसलिए हाथ में तीर कमान है, और जो सूर्यवंशी है उसने संकल्प किया और निशाने पे लगा और उसका काम पूरा हो गया, इसलिए वो निशाना लगा चुका है, उसके तीर कमान छूट गए हैं। तो हमको सूर्यवंशी बनना है, इसलिए सदा नशे में रहना है, और नशे में रहेंगे तो निशाना सही लगेगा, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार संकल्प करेंगे तो ही सिद्धि हो जाएगी। मैं विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहा हूँ, सारे विश्व की आत्माएं मुझे देख रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये मत सोचो कि मैं मेरे घर में हूँ कि ऑफिस में हूँ कि मैं थोड़े से लोगों के बीच में हूँ, नहीं, हम आत्माओं के एक एक संकल्प का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है, हमारी एक एक एक्टिविटी सारे विश्व को प्रभावित करती है। तो कोई भी काम करते समय मुझे यही सोचना है कितनी करोड़ों आत्माएं मुझे देख रही हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है ना तो उसके ऊपर कितने कैमरे फिट हो जाते हैं, उसकी एक एक एक्टिविटी को कैमरे में कैद करते। तो बाबा ने कहा आप तो बड़े से बड़े बाप के बड़े से बड़े बच्चे हो, इसलिए आपकी हर एक एक्टिविटी को कितने कितने कैमरे, जड़ कैमरे नहीं चेतन कैमरे अपने में कैद करते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अलर्ट होकर के हमें अपना रोल प्ले करना है। आवश्यकता से अधिक इच्छाओं का त्याग करें। इच्छा कभी आदमी को अच्छा नहीं बनने देती, इच्छा की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। आज वो 1 मीटर लंबी है, कल 2 मीटर लंबी है, और होते होते एक दिन वो इतनी लंबी हो जाएगी कि पृथ्वी और आकाश के बीच की लंबाई से भी उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी। अर्थात इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। और इच्छा की एक और खासियत होती है, जब तक चीज दूर है तब तक वो बहुत लुभावनी लगती है, और नजदीक आ जाती है तो वो चीज धुंधली लगने लगती है। दूर है तो सोने जैसी, नजदीक आ गई तो मिट्टी जैसी, और जब वो चीज मिल गई तो उसका सुख नहीं लेता व्यक्ति, फिर दूर वाली के पीछे भागना चालू कर देता है, जिंदगी भर इसी दौड़ में लगा रहता है। इसलिए प्यारे बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बाबा को साथी बनाएं, साक्षीपन की स्थिति बनी रहे, बाबा को अपना हाथ दे दें, हाथ पकड़ाए रखें, बाबा के हाथ में हाथ रहेगा तो बाबा हमारा हाथ कितने भी झंझावात आए, आंधी तूफान आए, लेकिन हाथ छूटने नहीं देगा। दिन में 5 बार अपने फरिश्ते और देवताई स्वरूप को देखें। ये बहुत प्यारी ड्रिल है। अभी मैं बीज रूप हूँ, अभी मैं सतयुगी देवता हूँ, अभी मैं पूजनीय स्वरूप में हूँ, अभी मैं ब्राह्मण हूँ और अभी मैं फरिश्ता हूँ। तो बार बार ये ड्रिल करेंगे तो व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचेगा। अपने मन को समझाएं कि परमात्मा से अतिंद्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कब करेंगे? क्या सतयुग में जाके करेंगे? क्या त्रेता में करेंगे? क्या द्वापर में करेंगे? क्या कलयुग में करेंगे? एक छोटा सा संगम युग और उसका भी बहुत सारा समय निकल गया, तो ये थोड़ी सी घड़ियां अतिंद्रिय सुख की, अगर इनमें नहीं किया तो कब करेंगे? ये बात सोचेंगे तो मन की व्यर्थ बातें खत्म हो जाएंगी। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाएं, ट्रैफिक कंट्रोल को मिस ना करें। मनसा सेवा द्वारा स्काश देने में मन को बिजी रखने के अभ्यासी बने। मुरली के विभिन्न पॉइंट्स पर मनन चिंतन करके बुद्धि को हल्का रखें। डॉट और नोट की स्मृति रहे, ये भी बाबा की मुरली की बहुत प्यारी पॉइंट है। कोई भी घटना घट गई उसको डॉट लगा दें और माया की बातों को नोट कर दें, ये मुझे नहीं करना। कर्म करते बार बार ड्रिल करते रहें, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। ओम शांति।